मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज के हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी एक विशेष अवसर के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए बैठे हैं। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमने समझा है कि हम जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है उनके प्रति अपनी श्रद्धा उनके प्रति अपना समर्पण समय समय पर उनके गुणों का चिंतन और उनके गुणों का स्मरण और उनके गुणों की प्राप्ति की भावना जरूर भाते रहे। आज इस श्रवण परंपरा के पुनर्जन्म या कि पुनर्स्थापन में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है ऐसे आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि पर हम उनके गुणों का चिंतन स्मरण और उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा विचार करते हैं ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। भोजपुर के पास में छोटा सा ग्राम है एलगुल, वहां आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। वो उनके नाना का घर, नाना के घर में उनका जन्म हुआ और ये 1872 की बात है। सन 1872 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 1913 में उत्तूर ग्राम में छुल्लक दीक्षा ली। गिरनार यात्रा के दौरान उन्होंने एलक दीक्षा प्राप्त की और 1920 में उन्होंने देवप्पा स्वामी या देवेन कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा प्राप्त की और समडोली में आचार्य पद 1924 में उनको प्राप्त हुआ जब मुनि श्री वीर सागर जी और नेमी सागर जी महाराज को दीक्षा दी और 1937 में जाकर के चार्य चक्रवर्ती पद उनके अपने आचरण की श्रेष्ठता को देखते हुए उन्हें प्रदान किया गया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आचार्य शांति सागर जी महाराज महान तपस्वी थे और उनकी तपस्या का एक उदाहरण कि 84 वर्ष के उनके जीवन काल में 57 वर्ष उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। 84 वर्ष के पूरे जीवन काल में 57 वर्ष तो उन्होंने अन्न ही ग्रहण नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे कि 36 वर्ष के मुनि अवस्था के काल में 25 वर्ष 9 माह में लगभग 10,000 उपवास उन्होंने किया। ऐसी तपस्या और ऐसी निर्जरा करने की साधना विरले ही साधु जनों में देखने में आती है, और वो भी इस युग में। इसलिए उनकी ये तपस्या हमें प्रेरणा देती है। हम तो अपनी सामर्थ्य को बहुत होने पर भी कमती जान करके इन चीजों में रुचि नहीं लेते हैं। हमें इस तरह की साधना और तपस्या में रुचि लेनी चाहिए, और अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम जो करते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी सद्भावना हमेशा बनाए रखना चाहिए। दो उदाहरण मेरे सामने हैं। उनकी महातपस्या के उदाहरण वैसे सभी को विदित हैं। उन पर सिंह के द्वारा, सर्प के द्वारा और चींटियों के द्वारा उपसर्ग हुए 3 दफे। लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने आप में साधना में अडिग रहे। चींटियों ने तो उनके सारे शरीर को लहू लुहान कर दिया, तब भी वे स्थिरता से और आत्मा के ध्यान में लीन रहे। सर्प घंटों उनके शरीर पर लिपटा रहा, पर वे इसके बावजूद भी अडिग रहे। सिंह सामने आकर के बैठा रहा, लेकिन वे अत्यंत निडरता पूर्वक और अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। मैं सोचता हूं कि ये सारी चीजें कैसे संभव हुई। एक तरफ जहां उनके मन में अपने अंदर समता है, सब प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में इसके साथ साथ वात्सल्य भी है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हम बड़े से बड़े, क्रूर से क्रूर मनुष्य या कि पशु उसको भी शांति का पाठ सिखा सकते हैं। अपने परिणामों में समता उन्होंने रखी, और इतना ही नहीं, जो उनके संपर्क में आया उसके प्रति उन्होंने अपना वात्सल्य, अपनी मैत्री प्रकट की, जिससे कि सारे जीव उनके पास आकर के और शांति महसूस करते। उनकी महातपस्या का एक फल, वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, आप चारित चक्रवर्ती पढ़ें और जरूर पढ़ें। मैं तो सोचता हूं कि चारित चक्रवर्ती हर घर में एक जरूर रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के हाथ में अगर आप सौंप के जाएंगे तो वो जानेंगे कि हमारे धर्म में और कैसे कैसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अपनी साधना से अपना ही नहीं प्राणी मात्र का कल्याण किया, उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने का साहस दिया। भैया, कोई सच्चे रास्ते पर तब चल पाता है जब उसे ऐसा लगे कि कोई सहारा मिलेगा, और उसे ये लगे कि कोई हमसे पहले भी यहां से गुजरा है, वरना रास्ते पर चलने का साहस नहीं होता। तो कोई अगर हमसे आगे चलता है तो मानिएगा वो हमें प्रेरणा देता है कि हम भी चल सकते हैं, और साथ ही अगर हम उनका स्मरण अपने अंदर बनाए रखें तो वो स्मरण भी सहारा देता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उनका तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था, मुझे स्थान का नाम याद नहीं रहता पर फिर भी मैं लिख के लाया था, बेडली एक कोई ग्राम था, वहां पर एक व्यक्ति के सिर में पीड़ा थी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी मैरेकुलस हैं, बड़ी चमत्कारिक हैं। मैं इन चीजों को ऐसे नहीं देखता चमत्कार की दृष्टि से, मैं सोचता हूं कि जहां भावनाओं की निर्मलता है वहां ये सारी चीजें जिनको हम चमत्कार कहते हैं, जिनको हम असाधारण कहते हैं, वो अत्यंत सहज और साधारण रूप से संपन्न हो जाती है, जहां भावनाओं की निर्मलता है। और भावनाओं की निर्मलता आती है तपस्या से और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य से, और वो दोनों चीजें आचार्य शांति सागर जी महाराज के भीतर देखने मिलती हैं। और उस व्यक्ति के सिर में इतनी वेदना, वर्षों हो चुके इलाज होते लेकिन ठीक नहीं हुई, और शांति सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करके प्रणाम किया और उन्होंने अपनी पीछे से उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके बाद से पूरे जीवन में उसे कभी भी सिर की वेदना नहीं हुई। ये क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे, कोई उन्होंने जादू कर दिया क्या? अरे भैया, ये जादू क्या कम है, हमारी अपनी तपस्या से हमने अपनी भावनाएं निर्मल करके और अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद चमत्कार ही उत्पन्न करता। इतना ही नहीं, एक तलकचंद देवचंद गांधी फलटन के थे, उनके घर में 10 वर्ष का बालक था, उसको सांप ने काट दिया। महाराज के चरणों में ला करके रख दिया। महाराज ने थोड़ी देर के बाद सिर्फ इतना ही कहा, ठीक हो जाएगा। ऐसी 64 रिद्धियों का वर्णन आता है। पंचम काल में वैसे रिद्धिधारी देखने नहीं मिलते, लेकिन शांति सागर जी महाराज के परिणामों की विशुद्धि से ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें ऋषियों के अंदर हुआ करती थीं। सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप थोड़ी देर के बाद वो निर्विष होकर के और सहज रूप से और अपना सारा कार्य करने लगा, उसकी उसका विष दूर हो गया। इतना ही नहीं, एक नसलापुर में कुष्ठ रोगी था। किया होगा उसने मुनि जनों की निंदा करी होगी, क्योंकि एक ही विशिष्ट कारण है कुष्ठ रोग में। आचार्य भगवंतों ने तो एक ही कारण लिखा हुआ है कि किसी को अगर गलित कुष्ठ हो जाए तो उसका एक ही कारण है कि उसने पूर्व जीवन में, या कि कई लोगों को उसी जीवन में भी देखने में आता है। मेरे जीवन में एक ऐसा उदाहरण रहा, मेरे सामने सामने रहा है। फिर उन्होंने जब, और उसके बाद एक और बड़ी मजे की चीज कि उसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने फिर मुनि महाराज की प्रशंसा करनी शुरू कर दी तो रोग भी ठीक हो गया। ये मेरे सामने की बात है, सागर की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर ऐसा है आज भी। तो उसको कुष्ठ रोग हो गया, आचार्य महाराज के पास लेकर के गए तो आचार्य महाराज ने कहा कि 6 माह महाव्रतों के जैसा आचरण कर लो, अगर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो 6 माह तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, इस रोग से मुक्त हो जाओगे। और सचमुच उस व्यक्ति ने आचार्य महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करके 6 माह का जो ब्रह्मचर्य पालन किया, ठीक 6 माह के बाद उसका रोग अपने आप ठीक हो गया। क्या हुआ, कर्मों की निद्रा हो गई, परिणामों की निर्मलता से, और उन्होंने आचार्य महाराज ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे इस तरह का दिशाबोध दिया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आचार्य महाराज के हैं। और इतना ही नहीं, उनको बच्चों के प्रति बहुत वात्सल्य था। हाँ, इसका भी उदाहरण है, वारसी में 1953 में उनके संलेखना के 2 साल पहले की, क्योंकि उनकी संलेखना 1955 में भाद्र सुदी दोज को हुई, 18 सितंबर, उस समय डेट 18 सितंबर पड़ी होगी 1955 में। उसके पहले 2 साल पहले की बात है, एक 4 साल का बेटा अपने परिवार के साथ आया तो महाराज से बिल्कुल निडर होकर के और महाराज के पास जाके बैठ गया। महाराज ने सिर पे हाथ रखा तो बोलता कि आपसे एक बात पूछूं। हाँ बोलो, क्या पूछो। वो जो आपके साथ में सांप रहता था वो कहां चला गया? वो देखने आया था कि सुना था उसने कि सांप रहता उनके साथ में, तो वो जो सांप रहता था वो कहां चला गया? तो आचार्य महाराज बोले, तुम आ रहे थे ना, तुम्हें डर लग जाता इसलिए उसको भेज दिया, वो अभी फिर आएगा बाद में जब तुम चले जाओ। बच्चों को बच्चों के जैसा ही जवाब, यही तो उनके प्रति वात्सल्य है। और इतना ही नहीं, इतनी महान तपस्या में कोई भी व्यक्ति अत्यंत कठोर हो सकता है, लेकिन वह निर्मलता और वह वात्सल्य उनके भीतर तब देखने में आया। यह घटना मुझे आचार्य श्री ने हमारे सुनाई थी कि आचार्य शांति सागर जी के एक ही दिन में 2 तरह की चीजें घटित हुई, एक तरफ उनकी तपस्या और एक तरफ वात्सल्य। वो 12 बजे सामायिक में दोपहर में बैठने वाले थे, मंदिर में सारे लोग जा चुके थे, और जैसे ही सामायिक में बैठने की तैयारी की उतने में देखा कि ऊपर चिड़िया के घोंसले में से एक चिड़िया का बच्चा धोखे से नीचे गिर गया। अब उनके मन में आया कि यदि मैं सामायिक में लीन हो गया और उतनी देर में कोई बिल्ली आई और अगर इसने उसे खा लिया तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करेगा, मंदिर में तो कोई नहीं है, तो वे सामायिक में नहीं बैठे। देखना आप, ये कह सकते हैं अपन कि अरे काय को घर छोड़ा, अपने समय पर सामायिक में बैठना था, सामायिक में नहीं बैठे, उसकी सुरक्षा करते आधे घंटे तक, 12:30 बजे तक देखते रहे कि कोई आ जावे। और फिर मंदिर में 12:30 बजे कोई आया, उसको इशारा कर दिया कि इसको संभाल लो, और जैसे उसको संभाल लिया तो फिर ध्यान में ऐसे लीन हुए कि 2.5 घंटे तक हिले नहीं, और उस बीच में सर्प आकर के उनसे लिपटा रहा तब भी नहीं हिले। अपनी तपस्या में अत्यंत कठोर, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए अत्यंत वात्सल्य और करुणा, ये दोनों चीजें उनके जीवन में एक ही दिन में लोगों ने घटित होते हुए देखी। एक और उनके जीवन का उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। किसी पहले जो है वो फोटो खींचती थी तो ऐसे थोड़ी डिजिटल थोड़ी था कैमरा वगैरह कि एकदम फट से फोटो आ गया। तो पहले तो वो बड़ा ताम झाम आता था फोटो खींचने का, फिर उसमें कपड़ा ढक करके उसके भीतर से और बड़ा भारी दूरबीन उड़बीन लगा करके फिर खींची जाती थी। तो वैसा सब अरेंज हुआ उनके शांति सागर जी महाराज के फोटो खींचने के लिए, उन्होंने हाँ भी कह दी। पर अब फोटोग्राफर तो फोटोग्राफर है, उसने कहा महाराज थोड़ा ऐसे बैठिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा ऐसे करिएगा, अब उसमें तो फोटो तो तभी ठीक आएगी। तो उतना सब करवा लिया चुपचाप, कुछ नहीं बोले, और उसके बाद 8 दिन तक मात्र दूध पानी लिया। लोगों ने कहा कि महाराज और बाकी चीजें तो ले आप, बोले मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया, ये पद तो स्वाधीनता का है और मुझे उस समय क्योंकि मैं वचन दे चुका था फोटोग्राफर के अनुसार मुझे पराधीन होकर के अपनी चर्या करनी पड़ी, उतनी देर को पराधीनता महसूस करनी पड़ी, उसका प्रायश्चित स्वरूप मैंने 8 दिन तक सब चीजों का त्याग कर दिया। अपनी तपस्या में इतने सजग, बताइए ये मार्ग स्वाधीन होने का है। अपन ना साधु को पराधीन बनाए और ना साधु छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के और पराधीन हो जाए। बहुत पराधीनता का अनुभव जितना अधिक आज देखने में आता है, जितना अपन लोग धर्म की प्रभावना के ढंग अपना चुके हैं उनमें तो पराधीनता ही मालूम पड़ती है। कई बार मुझे इस चीज का अनुभव होता है, हमें इन चीजों से जिनमें की हमारी चेतना पराधीन हो उन चीजों से बचना चाहिए और आचार्य शांति सागर जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जो वचन है वे हमेशा इस बात के लिए प्रेरणा देते थे कि संयम धारण करो। वो हमेशा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीवों को प्राप्त हो जाता, नारकी जीव को भी सम्यक दर्शन हो जाता। अरे भैया सम्यक दर्शन के साथ में और मनुष्य जीवन में एकमात्र मनुष्य जीवन है जिसमें सम्यक दर्शन के साथ में व्रत नियम और संयम का पालन किया जा सकता है। इसलिए व्रत नियम संयम के भीरु नका संयम धरा, अरे डरो मत संयम धारण करो। वो हमेशा कहा करते थे कि संयम के साथ स्वर्ग में उत्पन्न होना ज्यादा श्रेष्ठ है। और कभी कभी तो हंसी में कहते थे ए भैया तुम भी व्रत ले लो तो व्रत लेने से और स्वर्ग में जाओगे, हमारा तुम्हारा अच्छा साथ हो जाएगा, वहां बैठ के तत्व चर्चा करेंगे, इसलिए संयम ले लो। इस तरह उनके मन में आखिरी समय तक संयम के प्रति और लोगों को प्रेरणा देने की भावना और स्वयं अपने जीवन को अनुशासित और संयमित जीवन जीने की भावना सदा बनी रही। वे हमेशा कहा करते थे कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में जो कि 6ठे 7वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की पूरी संख्या है, एक अंतर मुहूर्त में अगर अधिकतम होवे तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं। वो कहा करते थे कि मेरा स्थान तो उनमें सबसे आखिरी है, इतनी तपस्या, इतना प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, इतना सब होने के बावजूद भी और विनम्रता होना, आज छोटी सी कोई क्वालिटी हमारे भीतर डेवलप हो जाती है, थोड़ा सा हमें मान सम्मान मिलने लगता है तो हम अपनी विनय से विचलित हो जाते हैं, हम अपने विनय को छोड़ देते हैं। और वे इतने महान आचारी, इतना उनके जीवन में उन्होंने तपस्या करी, इतना ज्ञान हासिल किया, इतना अधिक उनके लिए और सारे देश में सम्मान मिला, लेकिन इसके बाद भी वे हमेशा कहा करते थे कि मैं तो उन सब में सबसे छोटा हूं, सब साधुओं में मैं छोटा हूं। ऐसा कहना उसी के बस का है जो कि सचमुच अपने भीतर बहुत ऊंचा उठ गया होगा। जो जितना ऊंचा उठता है उसके मन में ही प्राणी मात्र से के प्रति और महानता का भाव कि सभी महान हैं, मैं कहां महान हूं। जो अपने को महान माने वो महान नहीं है, जो सबको महान कहे सचमुच वो महान है। किसी को अच्छा कहने वाला ये तय हो गया कि कोई अच्छा हो या ना हो, पर स्वयं तो वो अच्छा ही है। और किसी को बुरा कहने वाला मान के चलना कि दूसरा कोई बुरा हो या ना हो, पर वो स्वयं तो भला नहीं है। दूसरे को बुरा कहने वाला कभी भला नहीं हो सकता, दूसरे को भला कहने से दूसरा भला हो या ना हो, पर स्वयं तो अपन भले हो ही जाते हैं। यही आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने मुझे तो ये सौभाग्य आचार्य महाराज की कृपा से मिला कि वही दिन जिस दिन की आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने संयम के जीवन को और शांति पूर्वक समता पूर्वक अपने देह का विसर्जन किया और अपने रत्नत्रय को जीवन भर निर्दोष रूप से पालन करते हुए आज तक उन्होंने निर्दोष पालन किया, और उसी दिन मुझे आचार्य महाराज ने इन व्रतों के पालन करने के लिए और जैनेश्वरी दीक्षा देकर के मुझे मुझ पर प्रकार कृपा की है। आज आप सब उस चीज के लिए भी मुझे मेरे अंदर आप पता नहीं क्या देखते हैं वो आप जाने, पर मैं तो अपने गुरुजनों के प्रति और उनके भीतर जो जो अच्छाइयां हैं उन्हें ही देखता रहता हूं, और अपने भीतर जो जो खोट हैं जो जो कमियां हैं उनको निकालने के लिए हमेशा भावना भाता हूं। आपसे भी यही कहूंगा कि मेरे भीतर अगर कोई कमी कोई दोष दिखाई पड़े तो मुझे बताना, मैं उसे निकाल दूंगा। मैं निकालने के लिए निकला हूं मेरे गुणगान करके, और आप तो अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे लेकिन अकेले मेरे गुणगान करने से मेरे जीवन को क्या लाभ मिलेगा। मेरे दोषों को यदि मैं अपने भीतर से निकालूं, अपने गुणों की प्रशंसा सुन करके और व्यक्ति अपने गुणों को अपने को श्रेष्ठ माने, इसमें उसका भला नहीं है, बल्कि उन गुणों के साथ साथ जो मेरे भीतर कमियां हैं उन कमियों को मैं हमेशा जानता रहूं, ऐसी शुभकामना भी आप दीजिएगा। और मैं आपसे आज के दिन ये भी चाहूंगा कि आप ऐसी सद्भावना मेरे लिए अवश्य करिएगा कि मैं भी ऐसे महान आचार्यों के बताए रास्ते पर चल करके और अपने जीवन को सार्थक करूं और इस देह का विसर्जन मैं इसी परंपरा के अनुरूप और समाधि पूर्वक अपनी देह का विसर्जन कर सकूं। और विशेष रूप से मेरी भावना है कि मैं अपने आचार्य महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में ही अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत करूं, और उनके द्वारा ही मुझे समाधि भी मिले। उन्हीं ने दीक्षा दी, वे ही मेरे जीवन में समाधि के लिए भी और निर्यापक आचार्य बने, ये शुभकामना भी आप दीजिएगा। मैं आपसे इतना ही चाहूंगा, और आपके लिए मैं क्या देऊं, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास दो ही चीजें हैं, थोड़े से श्रेष्ठ विचार हैं और थोड़ी सी मैत्री है, थोड़ा सा प्यार है, वो दोनों चीजें मेरे पास है, वो भी मेरे गुरु की दी हुई हैं। सो उसमें से जितना आपको अच्छा लगे उतना ग्रहण करके अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। का तय है तो आज अभी ठाट से जियो। एक वे हैं जो ये सोचकर जी रहे हैं कि जब एक दिन मरने का तय है तो आज अभी ठाट से जियो। एक तुम हो जो ये सोच के मर रहे हो कि अगर आज अभी मौत आई है तो शान से मरो।
वाह वाह।
एक तुम हो जो ये सोचकर मर रहे हो कि आज अभी यदि मौत आई है तो शान से मरो। अरे ये तो हम हैं जो इस सोच में न जी पा रहे हैं न ठीक से मर पा रहे हैं कि वे क्यों शान से जी रहे हैं और वे क्यों ठाट से मर रहे हैं। हमें दोनों में ही तकलीफ है। मैं एक बार पहली बार अपने जीवन में मरघट गया था, वो भी मुनि बनने के बाद चतुर्मास कर रहे थे हम 86 में गढ़ाकोटा में, तब जहां जंगल था तो उस रास्ते में ही, और मैंने पहली बार किसी अर्थी को आते देखा और उसे रख करके और लोगों को जलाते हुए, और इतना ही नहीं कुछ लोग जला रहे हैं बाकी तो अपने भाव ताव और उन सबका डिस्कशन कर वहीं पर। मरने वाला तो जा चुका लेकिन अब चूंकि एक साथ मिलना हुआ है तो वे अपने संसार की बातों में उलझे हुए हैं, तब मुझे लगा कि शायद ऐसा ही सबके साथ होगा। इससे पहले कि ये सब हो हमें अपने जीवन को कुछ ना कुछ दिशा दे देनी चाहिए। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, अभी मुरझाना टूट कर गिरना और अभी खिल जाना है, अभी मुरझाना टूट कर गिरना और अभी खिल जाना है। कल यहां आया था कौन कितना रहा इससे क्या, कल यहां आया था कौन यहां कितना रहा इससे क्या, आज मुझे अभी लौट जाना है। मेरे जाने के बाद लोग आए अर्थी संभालें कांधे बदलें, मेरे जाने के बाद लोग आए अर्थी संभालें कांधे बदलें, इससे पहले मुझे खुद को संभालना और बदल लेना।
इसके पहले मुझे खुद को संभालना और बदल लेना है। मेरे जाने के बाद लोग आएं, मेरी जली देह की राख उठाएं, मुझे उसे कहीं सिराएं, इससे पहले मुझे अपने अहंकार को जलाना और अपने को अपने में सिराना, डुबो लेना है और ऊंचे उठना है। मौत आए और जाने कब आए, अभी तो मुझे रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है, मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है।
बहुत अच्छा।
सरोज कुमार जी की तरह से मुझे थोड़ी ढूंढने में देर लगती, इसलिए मैंने आधा काम पहले ही कर लिया। लिख लिया उसमें कि कौन कौन सी सुना देंगे। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां दिखता है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है। और फिर सफेद पर काला लिखना अच्छा भी तो नहीं लगता। सफेद पर तो सफेद ही लिखा जाता है, तब तो कितना भी लिखो कागज एकदम सफेद रहा है। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करो, इस तरह लिखना कहां दिखता है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी यात्रा पर निकलता है तो लोगों की आदत होती है कि पूछें कि कहां जा रहे हैं और कितने दिन वहां रुकेंगे और कब लौटेंगे, इस तरह का। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं कि किससे कहूं कि कहीं तो नहीं जाना है।
क्या बात है।
मुझे इस बार अपने से चलकर अपने तक ही आना है। यात्रा पर निकला हूं, लोग पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। उसने कुछ नहीं जोड़ा। लोग बताते हैं कि पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब देता रहा, और दे देकर सबको जोड़ता रहा। लोग कहते हैं उसने कुछ नहीं जोड़ा, उसके पास पहनने का एक जोड़ा भी नहीं मिला। ये जोड़ा की टीनिंग जो है थोड़ी सी दो तीन जगह पर, उसने कुछ नहीं जोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन में कई बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, लेकिन कोई से पूछें कैसे, पूछेंगे तो लोग समझेंगे कि वाह इतनी सी बात नहीं मालूम, तो अज्ञानी रहे आना पसंद कर लेंगे लेकिन पूछेंगे नहीं। एक अहंकार मीतर कहीं ना कहीं। जब कभी लगता है कि तुमसे पूछूं बच्चों की तरह कि सूरज को रोशनी कौन देता है, क्या आकाश में इतना नीलापन कहां से आता है कि सागर में इतना पानी कौन भर जाता है। जब कभी लगता है कि तुमसे पूछूं कि सूरज को बच्चों की तरह कि सूरज को रोशनी कौन देता है कि आकाश में इतना नीलापन कहां से आता है कि सागर में इतना जल कौन भर जाता है, तब ये सोचकर कि कहीं तुम हंसकर टाल ना दो कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं चुप रह जाता हूं। क्या हुआ, विदिशा में एक बार चतुर्मास के दौरान 92 की बात है, जहां मुझे रोका गया था, तो ये जैसे फानूस लगा हुआ है तो इससे चौगना बड़ा और बहुत डेलिकेट, उसमें बड़ी बारीक बारीक सी वो थी और बहुत सुंदर था वो। मैं वहां सामायिक के लिए बैठने वाला था, उतने मैंने देखा कि एक चिड़िया जो है उसमें आकर के बैठ गई। बैठी तो वो हिलने लगा, हिलने से और चमक उसकी बढ़ गई और उसके भीतर बैठी हुई चिड़िया तो बहुत सुंदर। तो मैंने फिर उस पर लिखा, कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है। पर मन डरता है कहीं फानूस टूट कर गिर ना जाए कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए दो में से एक कुछ हो, या तो ये फानूस टूट के गिरेगा और चिड़िया उड़ जाएगी, कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती
महाराज जी। इसी क्रम में वो जो अपराध बोध वाली, हाँ, वो इसी क्रम में
आज जब चिड़िया देर तक मुझे एक टक देखती रही, फिर सहमी और सहसा उड़ गई। आज जब चिड़िया देर तक मुझे एक टक देखती रही, फिर सहमी और सहसा उड़ गई। मैं दिन भर उदास रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि चिड़िया का एक पिंजरा होता। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि चिड़िया का एक पिंजरा होता। चिड़िया समझ गई कि आदमी खतरनाक है। चिड़िया तो दूर बैठी अच्छी लगती है, पिंजरे में अच्छी नहीं लगती।
सीढ़ी भी रह गई महाराज जी।
हाँ, वो क्रम में जो है वो जिस तरह आ रहा है मैं वो सुना रहा हूँ, फिर नई वाली। मैं मेरे साथ मुश्किल ये है कि जो ये पब्लिश हो जाती ना तो फिर मुझे लगता कि मेरी नहीं रह गई। हाँ, वो मेरे पता नहीं क्यों, मैंने कल आप सरोज कुमार जी से भी कहा था कि मुझे ऐसा क्यों फील होता, फिर मुझे उनको सुनाने में बड़ा, और जब तक इसमें लिखा हुआ है जो पब्लिश नहीं हुआ तो लगता ये मेरी अपनी निजी है, ये तो सबके लिए हो गई। हाँ, तो इनको ऐसे ही सुना रहा हूँ आपको। हम सबकी सब बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, हम सबकी सब बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते हैं सब स्वीकार करते जाना कमजोरी है, लोग कहते हैं सब स्वीकार करते जाना कमजोरी है, सो हम उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि सबकी सब बातें स्वीकार कर लेना कमजोरी है, सो हम उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या करें, हम कमजोर हैं, हमसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। क्या करें, हम कमजोर हैं, हमसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। पर बहुत कठिन है आज के समय में। क्या होता है कई बार जीवन में कि ऐसे भी मौके आते हैं, साधु के जीवन में भी आते हैं, श्रावक के जीवन में तो आते ही हैं, कि जहां से हमें चोट की अपेक्षा नहीं होती वहां से भी चोट मिलती कई बार। संसार ऐसा है, और वो कोई संसार चोट देता हो ऐसा नहीं, हमारे ही कर्म कब हमें कहां से चोट दे देंगे और कब हमें फूल माला डाल देंगे गले में, कहां कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जब कभी कहीं से चोट की अपेक्षा नहीं होती और वहां से चोट मिलती है तो मन में कैसा भाव आता है और उसका पॉजिटिव अप्रोच क्या है। मैं तो लोगों के लिए सीढ़ी हूं, मैं तो लोगों के लिए सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है। मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है। तब सीढ़ी का क्या अधिकार कि वो सोचे कि किसने धीरे से पैर रखा और कौन उसे रौंदता हुआ चला गया। मैं तो सिर्फ एक सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है। अब इससे और क्या अधिक जवाब दिया जा सकता था।
महाराज जी, कविता थी जिसमें समुद्र और वृक्ष के उसमें पुरुष कहता है।
हाँ, वो है तो वो मेरे इसमें हम वहां गए सिलवानी में, तो वहां पर एक दिन 10-12 दिन के बाद सामायिक में बैठ रहे थे, तो उसी समय खटपट खटपट की बड़ी तेज आवाज आई। तो हमने लोगों से कहा कि क्या हो रहा है, तो बोले कुछ नहीं, बाजू वालों का मकान बन रहा है। हमने कहा लेकिन आज तो बहुत खटपट हो रही। बोले देख के आते हैं। देख के आए, बोले कुछ नहीं, वो एक दीवार थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, उसको तोड़ करके फिर से बना रहे हैं। हमने कहा और अभी तक? अभी भी काम चल रहा था, वो तो जब से आप आए उसके पहले से भी चल रहा था। तब हमें लगा कि शायद ऐसा ही है, बनता चुपचाप है, बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है।
वाह वाह,
बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। जिंदगी के दौर में जाने क्यों, अब आवाज ही आवाज है। बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। जिंदगी के दौर में जाने क्यों, अब आवाज ही आवाज है। एक बार, एक तो हम अपना काम अपने हाथ से करने के लिए अच्छा समझते हैं और किसी को भी सौंपते नहीं कि ये काम कर दो या ये काम कर दो। पर एक बार क्या हुआ कि हमने एक व्यक्ति को कहा कि ये वाली पुस्तक या कुछ ऐसा था कि इस पे कवर लगा दो या इसको चिपका दो, तो वो जनाब गए और 2-3 दिन लग गए उनको, जबकि 5 मिनट का काम था। जब वो लौट के आए तब तक हमने एक कविता बना के उन्हीं को सुना दी। तो वही हम आपको सुना। यहाँ के लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं, यहाँ के लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं, कल का काम आज नहीं करते। यहाँ के लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं, कल का काम आज नहीं करते, और कल तो कभी नहीं आता, इसलिए फिर कभी नहीं करते। यहाँ के लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं, कल का काम आज नहीं करते।
महाराज जी, जयपुर का किस्सा है।
अभी मुझे और दिन रहना है जयपुर में, जयपुर का किस्सा कहीं और सुनाएंगे। नियम सब बने हैं, हम लोग नियमों का बहुत पालन करते हैं, पर मेरा शुरू से रहा कि दूसरे के द्वारा दिए गए नियम जीवन को ऊंचा नहीं उठाते, अपने द्वारा लिए गए नियम जीवन को ऊंचा उठाते हैं। नियम सब बने हैं इसलिए कि हम बने रह सकें, नियम सब बने हैं इसलिए कि हम बने रह सकें, पर होता यह है कि हम टूटते जाते हैं और नियम बने रहते हैं। होता यह है कि हम टूटते जाते हैं और नियम बने रहते हैं। टूटे हुए नियम जोड़ना आसान है, टूटे हुए नियम जोड़ना आसान है, पर टूटी हुई जिंदगी जोड़ने में कई कई जिंदगियां लग जाती हैं। नियम सब बने हैं इसलिए कि हम बने रह सके। क्या हुआ, हर एक कविता के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी, पर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास कुल 5-7 मिनट और हैं। हाँ, वो मैंने तय किया है, आपने नहीं, किसी ने भी नहीं। आयोजक क्यों तय करेगा, वो अपना झगड़ा मोड़ लेगा क्या? मैंने खुद तय कर लिया। बंडी वावरा में क्या हुआ कि दीपावली का समय था, तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने मेरे से चर्चा की कि बच्चे लोग अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पटाखे फुलझड़ी नहीं चलाएं, तो एक अननेसेसरी हिंसा से बच जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने लिखा उस पर बोर्ड पर कि महाराज के आदेश अनुसार और बच्चों को इस बार दीपावली पर पटाखे फुलझड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो हमने तो उनसे तो कह दिया था, पर हम थोड़े से बच्चों की तरफ भी हो जाते हैं, ज्यादा नहीं हो पाते बड़ों की तरफ, बच्चों की तरफ जल्दी हो जाते। तो हमने फिर बच्चों के लिए लिखा कि पटाखे फुलझड़ी बड़े लोग नहीं चलाते, पटाखे फुलझड़ी बड़े लोग नहीं चलाते, तितली बेनी पकड़ते, ये सब तो बच्चों के काम है। पटाखे फुलझड़ी बड़े लोग नहीं चलाते, तितली बेनी पकड़ते, ये सब तो बच्चों के काम है, पर बच्चे बड़े निष्काम हैं। ये सब तो बच्चों के काम है, पर बच्चे बड़े निष्काम हैं। कामनाओं से लदे बड़े लोगों को और बहुत से काम है। कामनाओं से लदे बड़े लोगों को और बहुत बड़े बड़े काम है। जो आप कह रहे थे, मैं उसकी जगह पर दूसरा सुनाऊं।
दर्पण शीशा भी,
हाँ वो फिर मेरे पास टाइम तो उतना ही है, मुझे जो इसमें से सुनानी है वो सुनाऊंगा, फिर टाइम बचेगा तो आप जो कह रहे हैं वो भी सुनाओ, ठीक है?
महाराज जी, आपको तो अंत भी नहीं करना है, इनको तो करना है, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए।
नहीं तो या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग अंत ना करें, या कि मैं करना शुरू करूं।
ऐसा
तो नहीं। अपने ही बच्चों को डराने धमकाने कुछ डरावने चेहरे मैंने अपने लिए बनवाए थे। ऐसा होता है बचपन में, अपने ही बच्चों को डराने धमकाने मैंने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे, फिर असलियत जानकर हंसते रहे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे, फिर असलियत जानकर हंसते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे चेहरे लगाकर मुझे ही डरवा रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो गए मेरे चेहरे लगाकर मुझे ही डरवा रहे हैं। ये होता है, ये विशेष सर्कल है। सोचता हूं एक पौधा लगाऊंगा, वो वृक्ष बनेगा, सभी को छाया देगा, फल देगा, चिड़ियों को घर बनाने का अवसर देगा। सोचता हूं एक पौधा लगाऊंगा जो वृक्ष बनेगा, सभी को छाया देगा, फल देगा, चिड़ियों को घर बसाने का अवसर देगा। जब तक रहेगा हवाओं में खुशबू भरेगा, जब तक रहेगा हवाओं में खुशबू भरेगा। आदमी से तो बेहतर रहेगा। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और मुझे समझाया कि इतना बड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराकर जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। जिंदगी में मुझे पहली बार लगा कि जितना जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा।
वाह 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 महाराज, वाह वाह।
मुझे पहली बार लगा कि जितना जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा। एक और जो है, मैंने आकाश से पूछा, मैंने आकाश से कहा तुम कितने बड़े हो, मैंने आकाश से कहा तुम कितने बड़े हो, आकाश कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े हो।
वाह वाह वाह।
मैंने सागर से कहा तुम कितने गहरे हो, सागर कहता है तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। सागर कहता है तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। फिर मैंने सूरज के सामने माथा झुकाया और कहा तुम कितने तेजस्वी हो। फिर मैंने सूरज के सामने माथा झुकाया और कहा कि तुम कितने तेजस्वी हो, सूरज कहता है तुम मुझसे भी कई गुने तेजस्वी हो। सूरज कहता है कि तुम मुझसे कई गुने तेजस्वी हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि तुम महान हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि तुम महान हो, आदमी कहता है तुम ठीक कहते
हो।
फिर मैंने आदमी से कहा कि तुम महान हो, आदमी कहता है एकदम एग्जैक्टली तुम ठीक कह रहे हो। जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा। जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, देखो इसमें रोनी सूरत कैसी तो लगती है। जब भी मैं रोया करता माँ कहती ये लो शीशा, देखो तो अपनी रोनी सूरत इसमें कैसी तो लगती है। अनदेखे ही शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता। अनदेखे ही शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता। एक बार रोई थी माँ भी, एक बार रोई थी माँ भी नानी के मरने पर। फिर जीवन भर मैंने माँ को भीतर तक हंसते कभी नहीं देखा। एक बार रोई थी माँ भी नानी के मरने पर, फिर भीतर तक मैंने माँ को हंसते कभी नहीं देखा। माँ के जीवन में शायद शीशा देने वाला अब कोई नहीं।
वाह वाह वाह।
माँ के जीवन में शायद अब शीशा देने वाला कोई नहीं था। सबके जीवन में कोई ऐसे ही खो जाता होगा शीशा देने वाला। सबके जीवन में ऐसे ही खो जाता होगा कोई शीशा देने वाला। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना लिया उतना ही पिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें जीवन समा जाए अपना। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें जीवन समा जाए अपना। संसार बहुत बड़ा था, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया नया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया नया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने मुझे सदा सिखाया। चिड़िया ने मुझे सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। चिड़िया ने मुझे सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। मैंने चिड़िया को प्रतीक बना करके और बहुत सारी बातें लिखी हैं। आखिरी जो है वो बात मैं कह रहा हूँ जो मुझे सारी कविताओं में अच्छी लगती है वो मैं आखिरी में सुना रहा हूँ। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर। मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ कि जहाँ पर मैं रहता हूँ जिस कमरे में वहाँ यदि चिड़िया को सुविधा मिलती है तो वो अपना एक घर वहाँ बना लेती है। घोंसला उसका बन जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ठंड के दिनों में जिस कमरे में हम वहाँ बरेली की बात है वहाँ रुके थे उसमें तो तीन तीन जगह पर उतने छोटे से कमरे में चिड़िया ने अपना। और ये इस बात का प्रतीक है कि उसने एक निश्चिंतता और एक अभय महसूस किया। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। बहुत मुश्किल है कि कोई किसी के घर आए और उसे अच्छा लगे। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती।
क्या बात है।
मैं जानता हूँ तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा महाराज।
पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। वरना वरना किसी का भी घर यहाँ अपना घर कहाँ होता है? वरना किसी का भी घर यहाँ अपना घर कहाँ होता है? मान लेते हैं अंत में आचार्य महाराज के चरणों में मैंने जो एक बहुत पहले गीत लिखा था वो सुनाए देता हूं। जो जो तिसा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, वो देवता जो जो तिसा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, जो सांस बन मेरे हृदय में आता रखा जाता रखा, वो देवता जो ज्योति सा मैं बंधा जिससे मुझे जो मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश नौ देता रखा, वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रखा, जो मूर्ति में कई रूप धरता जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा, वो देवता जो दूर रहकर भी सदा जो दूर रहकर भी सदा साथ मेरे है यही एहसास देता रहा, वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, मैं जागता हूँ सो गया या मैं जागता हूँ सो गया या ये देखने द्वार पर मेरे सदा दस्तक देता रखा, वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में, जो गति था मेरी नियति था जो गति था मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रखा, वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता। आचार्य विवर विद्यासागर मुनि महाराज।